नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक नंबर 75। कृपा करके थोड़ा आप लोग आगे की तरफ आइए, क्योंकि बहुत भक्त क्या होता है, संडे है आज और फिर बाद में पेस नहीं मिलता है। कुछ भक्त लोग खड़े होकर सुनना चाहते हैं, लेकिन माताओं लोग थोड़े से आगे आगे जो भी बाद में आएंगे पीछे बैठेंगे। लेकिन जो बाद में क्या आने के बाद क्या होता है उनका फिर कथा थोड़ा बहुत छूट जाता है। सही, आपको जानकारी है कि नहीं है, पहले परीक्षित बैठे थे कि पहले सुखदेव गोस्वामी बैठे थे? बोलिए परीक्षित महाराज। इसलिए सुनने के लिए पहले श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा से लेके प्रेम तक को प्राप्त करना है। तो हमें कीर्तन में श्रद्धा, दर्शन में श्रद्धा, लेकिन एक ही श्रद्धा है किसमें? महाप्रसाद में। ये तो गारंटी है सभी को है? बहुत भक्ति के लिए आगे बढ़ाता है। हमें फिर देखते रहते हैं पीछे के, यहाँ पे इसलिए हमें लोगों को घड़ी नहीं लगाया, पीछे तरफ घड़ी लगाया, हम देखते रहते हैं 9 बजे का हुआ। सही ना? बहुत दिन का बाद आप लोग से मिल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को देखना होता है, मंदिर का मैनेजमेंट और सारा सेवा भी इधर उधर, कोरोना का वजह से ऐसा लेक्चर कभी बैठ के नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप लोग से आशीर्वाद जाचना करता हूँ। उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ प्रयास करूँगा कुछ श्लोक का ऊपर चर्चा करने के लिए। तब बोर्ड में जो लिखा हुआ मेरा पीछे दोहराइए, आराध्य आत्मपदम देवम सो आत्मनम जगत ईश्वरम कह वृणीता गुणस्पर्शम बुध स्यात् नरके अपि जत। आराध्यात्मप्रदं देवं सो आत्मनं जगदीश्वरं को वृणीत गुणस्पर्शं बुधः स्या नरके अपि जत। शब्दान्वाद, आराध्य उपासना के बाद आत्मप्रदम जो अपने आप को अर्पित करता है देवम भगवान को सो आत्मानम परम प्रिय जगत ईश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को कह क्या वृणीता चुनेगा गुण स्पर्शम भौतिक सुख बुध बुद्धिमान मनुष्य स्यात् है नरके नरक में अपि भी जात जो अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणबिंद भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की समस्त आख्याओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना। यदि कोई भगवान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। तात्पर्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा, यही भक्त की परीक्षा है। जैसा किसी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, बोलिए ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामये ममा जन्मने जन्मने स्वरे भवताद भक्तिर हैतुक हितोई। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे न तो धन संचय की इच्छा है न मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, न ही मुझे अनेक अनुजाई चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहितु की भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन दास सुंदर पत्नी यहाँ तक कि मुक्ति की भी कभी कामना नहीं करता, किंतु भगवान वचन देते हैं जोगक्षम वहामहम, मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। और आगे दो तीन श्लोक है जिसमें तात्पर्य नहीं है, मैं इसको पहले पाठ कर लेता हूँ। तदिदम मम दौर्जन्य बाली सम्या महीयसी क्षंतु महर्षि मातस्तम दिष्ट्वा गर्भ मृतोस्तितः। हे माता हे महीयसी, मैं मूर्ख हूँ, मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्रों बिना किसी खेती के आपके भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपके परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं। श्री सुकोवाच इंद्रस्तया भ्य अनुज्ञात शुद्ध भावेन दुष्टया मरुद्भि सताम नत्वा जगाम त्रिदेवम प्रभु। शिष्य को देव गोस्वामी ने आगे कहा दिति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब इंद्र ने अपने मौसी को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुद्गण भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। एवं ते सर्वमाख्यातम जन्मा तुम परिपृच्छसी मंगलम मरुतम जन्म किम भूय कथयाम ते। हे राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों विशेष रूप से मरुतु के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया था। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उससे भी विस्तार से बतलाऊंगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत नाम का 18वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। समाप्त बंद कर लें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसगण ललिता श्रीविशाखानीतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सूचना है जो कि मोबाइल का प्रति सावधान रहिए, नहीं तो 1100 रुपया फाइन पड़ता है कार्तिक महीना के लिए। पचहत्तर 76 77 और 78 मैं लास्ट से आ रहा हूँ। इस श्लोक लास्ट श्लोक में बताते हैं, राजा परीक्षित मैंने यथासंभव तुम्हारे पूछे गए प्रश्न विशेष रूप से मरुत के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। ये जो शीर्षक चल रहा है, दिति व्रत किया किसको मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए। ऐसा लगता है ना, एक पारिवारिक घटना हुआ है ना, एक परिवार का है, लेकिन भागवत में वर्णन है। और झगड़ा उसी जगह पे होता है, ज्यादा से ज्यादा माताओं का ऊपर आएगा। मैं पहले से आप लोग से चरण में दंडवत कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को कभी भी ऐसा विचार नहीं लेना कि मन में कुछ भी ऐसा विचार नहीं लेना जो कि शास्त्र में वर्णन है। इसको ऐसा नहीं आप सोचोगे माताओं लोग का ऊपर आक्षेप करके प्रभु जी बोल रहे हैं, ध्यान रखिए ठीक है। कलह कब सृष्टि होता है, झगड़ा कब होता है जानते हैं? दो व्यक्ति जब होते हैं झगड़ा होता है। सिंगल व्यक्ति कोई झगड़ा कर सकता है, कर सकता है? जैसे अगर एक हाथ में ताली बज सकता है क्या? दो हाथ होता है ना, ताली बजाने के लिए बजाइए बजाना। एक हाथ में कोई ताली बजा कर दिखाई दे, हम देखते हैं एक हाथ में ताली बजा कर देख लेगा, ऐसा ऐसा करके दिखाएगा क्या? नहीं होगा ना, दो हुए ना। कहने का जब दो व्यक्ति से कलह होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रभु लोग से माताओं लोग जब दो हो जाते हैं और एक पति और दो पत्नी हो जाते हैं, कलह वहां होना ही होना है। भागवत में इतनी जगह पर प्रमाण है, कितने प्रमाण है, एक ही प्रमाण नहीं, हजार हजार प्रमाण। आप देखेंगे ध्रुव महाराज का चरित्र में उत्तानपाद की सही सभी को मालूम है कि नहीं? वहां पे वही झगड़ा, श्री उत्तम गोद में बैठा और उसको, और ध्रुव महाराज उतान पातक में गोद में बैठने के लिए, भाई पिताजी सभी को तो समान दृष्टि में देखता है ना। जिस प्रकार परम पिता भगवान भी समान दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार पिता भी समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन माता का तो वहां पे झगड़ा। दूसरा महाराज चित्र के तो कितने पत्नी है, हाँ जी 1 करोड़। कृष्ण भी फेल मार गए, कृष्ण का तो 16108 पाटरण है, लेकिन कृष्ण भी फेल मार गए, चित्रकेतु का 1 करोड़ और किसी का भी संतान नहीं। और नारद मुनि अंगिरा से मिलने के नाते, और अंगिरा मुनि फल दिए तब फिर चित्रकेतु का जो बड़ा पत्नी है कृतदिति और उनका एक बच्चे हुए, और दूसरा जितने सब माताओं थे ये इनका विचार चला इसको कैसे मारना है, अंदर अंदर पूरा प्रयास। और देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं, दूसरा है देवजानी और शमिष्ठा। देवजानी किसका पुत्री थी? शुक्राचार्य की। और शमिष्ठा वृषपर्वा उनका पुत्री थे, लेकिन दोनों एक ही तालाब में नहा रहे थे, तब स्वयं शिवजी और पार्वती अपना विमान में बैठ के जा रहे थे, तब देवजन और शमिष्ठा देख लिए, और जब वो नहा रहे थे कपड़ा दोनों का कपड़ा एक ही स्थान पे था, उनको तो शर्म लगा, स्वयं शिवजी ऊपर उड़ के जा रहे हैं कोई ना कोई देख ले, तो जल्दी से जल्दी भागने लगे। सिर्फ कपड़ा सिर्फ बदल गया, सिर्फ कपड़ा बदल गया, और कितना बड़ा घटना हुआ, कितना बड़ा घटना हुई। और ये जो देवजानी को पहले श्राप मिला था, शुक्राचार्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते है ब्राह्मण वर्ण में शादी करना चाहिए, लेकिन उनको देवजानी को श्राप मिला था। उनको कौन श्राप दिया था? बृहस्पति का पुत्र कच्छ ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? शुक्राचार्य से ये कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखने जाते थे, तो पढ़ाई हो जाने के बाद देवजानी उसे वरण करना चाहा, किसको? कौच को। लेकिन कौच समझ गया ये मेरा तो गुरु का पुत्री है, मैं कैसे इससे शादी करूं, तब उसी टाइम पे वो प्रस्ताव नहीं रखा। तब देवजानी को उन्होंने नहीं, पहले तो उन्होंने जब मना कर दिया तब कौच को पहले देवजानी श्राप दिया। क्या श्राप दिया? तुम जितने से पढ़ाई कर रहे हो वो सारा पढ़ाई निष्फल हो जाएगा। तब फिर कौच ने देवजानी को श्राप दिया तुरंत। अब जितने सब शास्त्र में देखोगे ये शास्त्र भी भागवत भी आया आपका पास, ये श्राप से ही आया, श्राप का कारण से आपका पास भागवत प्रकट हुई। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था ना, और यहां पे कौच ने श्राप दिया देवजानी को। क्या श्राप दिया? कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और ये घटना उनका जो प्रारब्ध पड़ गया श्राप का, तब देवजानी को शादी फिर हुई। कब? फिर उन्होंने शमिष्ठा और देवजानी ये कपड़ा के लिए झगड़ा किए, झगड़ा करने के बाद शमिष्ठा घुसा हो गए, इतने घुसा हो के तब ऐसा धक्का मुक्की चला है ना, तब उन्होंने धक्का लगा दिया, तब देवजानी ने एक ही कुआं का अंदर गिर गई। तब गिरने के नाते आवाज दे रहे हैं, तो उसी रास्ता में जजाति राजा जजाति जा रहे थे, तो कुआं का देखे कोई आवाज आ रहा है, तो आवाज आने के बाद अंदर देखे कि नारी आवाज दे रहे है। तो देने के बाद उन्होंने देवजानी कहे मेरा को ये कुआं से उधार कीजिएगा। और कैसा कुआं? तो बहुत गहरा था, तो उनको उधार करने के लिए एक ही उन्होंने जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र को ऊपर फेंका, हम लोग रस्सी से उठाते ना, उसी प्रकार उन्होंने वस्त्र फेंका। तब वह वस्त्र जजाति पकड़ लिया और खींचा। जब पास में आ गया तब जजाति देवजनी का हाथ को पकड़ लिया। उसी टाइम पे ऐसा था, कोई माता एक ही प्रभु का हाथ को पकड़ लेता है तब उनको शादी करना अनिवार्य है। जिसी प्रकार विश्वावसु का पुत्री थी ललिता, और विश्वावसु ये जगन्नाथ कथा में आती है, ठीक है, और विद्यापति था ब्राह्मण। विद्यापति नीलमाधव को ढूंढते ढूंढते शाम हो गया था, तब कहाँ रुकना है, तब विश्वावसु का घर पे रुका। तब विश्वावसु हर दिन मंदिर जाते थे, सेवा करके आते थे, वापस आते थे, तो उनको पता नहीं था विद्यापति का। और जब विश्वावसु घर आ जाते थे तो बहुत सुगंध फैल जाता था। तब विद्यापति को मालूम हो गया ललित का पिता कहाँ जाते हैं, सुबह चला जाते शाम को वापस आते हैं। और विश्वावसु ललिता को सेवा में लगा दिया। किसका सेवा में? विद्यापति का सेवा में। उनका भोजन दिलाना, उनको जहाँ पे सोने के लिए बिस्तर सही से बिछाना, ये सब काम में लगा दिए। कहते हैं एक बार पानी, पानी मतलब जल ग्रहण करने मात्र से, और वहीं पे ललिता का साथ है विद्यापति का फिर शादी हुआ। विद्यापति पहले भी शादी की थी, लेकिन यहाँ पे विश्वावसु जात में क्या है, सवर है, और विद्यापति ब्राह्मण है। सिर्फ जल ग्रहण करने मात्र से, भोजन ग्रहण करने मात्र से, फिर और माताओं का ये देखेंगे। फिर आत्मदेव जो कि भागवत महात्म्य में ये वर्णन है, आत्मदेव का कोई भी संतान नहीं था। तब आत्मदेव एक जल का तालाब का पास बैठे, क्योंकि पहले समय पे ऐसे मुनि ऋषि होते थे कि जो भी वरदान देते थे वो सफल होता। ऐसा नहीं कि आज का टाइम पे, लेकिन हम ऐसा स्थिति पर नहीं है, ऐसा समय नहीं है, अभी परिवेश नहीं है। तब आत्मदेव ने का पत्नी थी दुंदुली, ये तो आप लोगों को सभी को मालूम है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी यही घटना हुई, दुंदुली और उनका जो सौतली था, और ये दुंदुली का मन में विचार आ गया, मैं ये फल खाऊंगा तब क्या होगा, पेट में बच्चा आएंगे, और पेट में बच्चा आने से माताओं को कितनी कष्ट होता है, और प्रसव वेदना और ज्यादा कष्ट, इसको कौन सहन करेगा। और वो जो सौतली थी, और उन्होंने दुंदली को अच्छा शिक्षा दे दिया। क्या शिक्षा दे दिया? वो जो फल है आप अपना गाय को खिला दो, और वो फल कभी निरर्थक नहीं गया, और गाय भी क्या हो गए, प्रेग्नेंट हो गए। इसलिए माता लोग के लिए कितने सावधान होना चाहिए। फिर मंत्र का अब देखिए, जिनको भरत महाराज छोड़ने के लिए नहीं था माता कैकेयी को, लेकिन राम से मिलाने के लिए, तब वह माता कैकेयी को भरत महाराज छोड़ना पड़ा। और सिर्फ यहां पे रोल कौन किया, सिर्फ मंथरा। जब भी परिवार में दो माता और एक ही पति होते हैं तो बड़ा संघर्षमय जीवन पति को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि माताओं लोग का भी बहुत आशीर्वाद है, माताओं लोग का ऐसा आशीर्वाद है जो कि व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ध्रुव महाराज का मां सुनीति, ये माता का हाथ था। विभीषण को जब रावण ने क्या किए, धक्का मतलब नाथ लगा के अपना देश से निकाल दिया, अपना राज्य से निकाल दिए, तब विभीषण जाके माँ का सरेंडर हुआ, मैं कहाँ जाऊँ। तो विभीषण भी माँ का आदेश को मानते हुए, माँ ने कहे तुम राम का शरण में चला जाओ। और कितने जितने सब काम देखेंगे, माता लोग का हाथ रहता है। कभी कभी माता लोग पति को गिरा भी सकता है और पुत्रों को नरक भी भेज सकता है, और वही माँ अपना पति को उधार कर सकता है, अपना पुत्रों को भी उधार कर सकता है। ऐसा शिक्षा, इसी प्रकार पहले समय पे भारतवर्ष में 732,000 गांव था। 732,000 गांव पे 732,000 गुरुकुल था, जिसी गुरुकुल में प्रत्येक बच्चा को जाना पड़ता था, गुरुकुल में सही शिक्षा मिलता था। आज का टाइम पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सही देखने के लिए नहीं मिल रहा है प्रॉपर शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा, कितने माँ है ऐसा बोलते हैं तुम जाओ ब्रह्मचारी बन जाओ, कोई है? आप जितने सब बैठे हैं, एक ही व्यक्ति हाथ उठाकर दिखा दे, कोई बोल दे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ? ज्यादा माताओं लोग का माता और पिता क्या करते हैं, बाई चांस वो आ गया आश्रम में ना, बड़ा टेंशन न्यूज पेपर से लेके कहाँ कहाँ तक फैला देते हैं, इसको खींचो अंदर। क्यों करते हैं? कहते हैं माता पिता ऐसे होते हैं, कहते हैं हम जिस नरक में है, यहाँ पे नरक बनाना है ना, हम जिस नरक में है बाई चांस बेटा ब्रह्मचारी बन के बाई चांस चला गया गोलक, तो भी यहाँ पे खेलने में मुश्किल होगा ना। बच्चे माँ बाप के साथ खेलते हैं ना, आप देखो छोटे बच्चे किसके साथ खेलते हैं, खेलने में मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा संतान बनाना चाहिए, संतान वही है जो संत का शरण में जाता है। वो संतान जो संत का शरण पे नहीं जाता है वो शैतान होता है। इसलिए आप जानना चाहिए, आपको संतान बनाना चाहिए कि शैतान बनाना चाहिए। हाँ जी, क्या बनाना चाहते हैं? लेकिन ये संतान और शैतान में कितना अंतर है आप देखिए। यही संतान जो संतान साधु का शरण पे गया, वो संतान माता पिता को उधार करेगा और माता पिता के लिए कल्याणदायी है। ऐसा संतान होते हैं, क्योंकि जब तक माता पिता का आचरण सही नहीं है संतान सही नहीं। ज्यादा पावर है माता पिता का आचरण का ऊपर, नहीं तो हिरण्य का और हिरण्य का शिपु, आप बताइए हिरण्य का और हिरण्य का शिपु कैसे जन्म हुए? क्योंकि ये तो दीति का गर्भ से है ना, हिरण्य का और हिरण्य का शिपु दीति का गर्भ से है, और शाम का समय था, कश्यप मुनि का इच्छा नहीं थी, लेकिन दीति का बलव्रत इच्छा होने के नाते और कश्यप जी उसी जाल में पड़ गए। लेकिन शाम का समय पे चार चीज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए, और लिखना चाहते तो भी लिख सकते हैं। आहारे जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति सुधाय मरणम ध्रुवम निद्रया च लक्ष्मी रुष्टम। क्या होता है? आहारे जायते व्याधि, जब शाम का समय पे आप आहार करोगे तब आप रोगग्रस्त रहोगे, इसलिए शाम का टाइम पे भोजन नहीं किया जाता है। मैथुने दुष्ट संतान, जब शाम का टाइम पे जो मैथुनी वृत्ति करती है तब उनका जो संतान होगा वो दुष्ट ही होगा। मैं एक ही चीज नहीं बता रहा हूं, फिर आएंगे ये दुष्ट संतान और एक ही है, जो आप लोग जानते हैं पद्मावती उग्रसेन की पत्नी थी, लेकिन कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ये ध्यान रखिए। ये भी यही काम हुआ, क्योंकि एक समय युवावस्था में जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ जमुना के तट पर खेल रही थी, तब एक कामुक द्रुमिड नाम का दैत्य उसका संग किया। उस समय था संध्या समय, शाम का समय, जिस कारण से कंस का जन्म हुआ। इसीलिए मैथुनी दुष्ट संतति, चले शाम का टाइम पे मैथुन वृत्ति नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, सुधाय मरणम ध्रुवम, और आप शाम का टाइम पे पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ते हो तब आयु नष्ट होता है। सुधाय, तब फिर शाम का टाइम और क्या नहीं करना चाहिए, निद्रया च लक्ष्मी रुष्टम, और शाम का टाइम पे आप सो जाते हो तब लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए, शाम का टाइम पे चार चीज नहीं करना चाहिए। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला श्लोक आया 75 नंबर में, आराध्यतम प्रददेवम सुम आत्मन जगदीश्वरम को गुणित गुण स्पर्शम बुध शान नरके अपि जत। इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का शरण पे आ जाता है, ये मैं देखिए कश्यप मुनि का जो दो पत्नी है, ये दोनों भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किए। एक ही तो पयव्रत व्रत किया और एक ही कौन किया, पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत को उड़िया भाषा में कहते हैं हरितोषण व्रत। दोनों व्रत किए, लेकिन दिति का गर्भ से हिरण्य का और हिरण्य का शिपु आए, लेकिन उसी गर्भ से हिरण्य का और हिरण्य का शिपु का बेटा कौन हुआ, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का बेटा कौन हुआ, विरोचन। विरोचन का बेटा कौन हुआ, बलि महाराज। देखिए भक्त आगे, दित्य का गर्भ से दैत्य आए, लेकिन दैत्य के बाद क्यों ना आए, सारा भक्त आए, लाइन लग गए। और इधर देखिए अदिति, अदिति का जितने सब संतान को हम क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं। और वही जो आदित्य 12 आदित्य होते हैं, उसमें स्वयं कौन आए, भगवान स्वयं आए। अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान आए, कौन भगवान आए, उपेंद्र, मतलब भगवान वामन देव। एक ही तरफ आए भगवान स्वयं आ रहा है, एक ही तरफ में परंपरा में देखेंगे कौन आ रहा है, भक्त आ रहा है। सभी का मन में डाउट होता होगा ये कैसा हुआ, ये सब थे भक्ति वाला। कश्यप जी भी भक्ति करते थे, अदिति भी भक्ति करते थे, और कौन, दिति भी। और ये जो प्रत्येक व्यक्ति का साथे कर्मफल लग जाता है, और ये भक्ति की दिति ने किया है, इसी कारण से 49 पुत्र नहीं मरे, ये भक्ति का कारण भगवान भव। और आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी उनको लगता है। इसलिए तो दिति से ये शिक्षा मिल रहा है, भागवत ये शिक्षा मिल रहा है। और जब हमें भगवान का शरणागत हो जाते हैं, यहां पे कहते हैं सो आत्मना जगदीश्वरम, जब भगवान का शरण पे आ जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए, भगवान से और कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये 8 श्लोक से ये महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मने सुरे भवताद भक्ति रहितोई। आप जितने सब बैठे हैं ये प्रार्थना करते हैं, ना धनम, देखते हैं भगवान के पास आकर प्रार्थना करते, मेरे को धन नहीं चाहिए, भाई मिल जाए तो पास जेब में डाल के पटापट भाग जाएंगे, मिल तो जाए, एक भक्त ने प्रवचन दे रहा था, बोला चैतन्य महाप्रभु वो तो बहिरागी थे ना, इसलिए उनको धन नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा है। वो बहिरागी थे, उनको धन नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, इसलिए लिखे हैं। लेकिन हमारा टाइम में तो धन चाहिए भाई, हमको फॉलोअर्स भी चाहिए। इसलिए वो प्रभु जी लेक्चर में बोले यहाँ पे नौ धनम जगह पे स धनम स जनम। वो प्रभु जी खोए बोलते हैं, बोले मैं आठ श्लोक जब मैं उच्चारण करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे नौ नहीं लगाता हूँ, मैं स लगा देता हूँ प्रभु। हो सकता है गलती होता है तो क्षमा कर देना, क्यों मेरा धन चाहिए भाई। जो बुद्धिमान होगा तब ये प्रार्थना करेगा। तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भक्तों के लिए कोई भी कमी नहीं रखते हैं। और भगवान जब भक्त के सामने प्रकट होते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कुछ वर मांगो। किसी भी भक्त का नाम बताइए जिनका सामने प्रकट हुए, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, स्वयं प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए, स्वयं इंद्रदुम्न राजा और गुंडीचा महारानी उनके सामने जब भगवान जगन्नाथ और बलदेव स्वयं प्रकट हो गए तब कहे वर मांगो। वो भी निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था, फिर भी ये वर मांगने के लिए। और ध्यान देना, संतान क्यों नहीं होता है, ये प्रारब्ध कर्म लगा रहता है। प्रारब्ध में क्या किया है मालूम नहीं होता है, संतान क्यों नहीं होता है, निसंतान क्यों होता है, क्योंकि पिछले जन्म में हम कुछ भ्रूण हत्या, नहीं तो गर्भपात, नहीं तो गर्भस्राव, ये तीन चीजें कुछ ना कुछ किए हैं। इस कारण से हमें संतान का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। ये तीनों में अलग अलग चीज, जब तक शरीर बना नहीं तब हम मेडिसिन खा के और कुछ उपाय करके उसको बाहर निकलते हैं, तब इसको कहते हैं गर्भस्राव। और शरीर बनना चालू हो गया और हम इसको मार देते हैं, हाँ बनना चालू हुआ, शुरुआत हुआ है, इसको कहते हैं गर्भपात। और जब हाथ पैर नाखून ये सब निकल गया और उसको हमें मार देते हैं तब उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। मैंने ये चीज़ अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मनुस्मृति में लिखा है। मैं एक जगह पे आदर्श गृहस्थ जीवन का बारे में बता रहा था, आदर्श गृहस्थ जीवन का पांच दिन का टॉपिक रखेंगे तो सुनोगे क्या क्या नहीं लिखा गया। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज का एक किताब निकाला है छोटी से, और महाराज युधिष्ठिर को स्वयं नारद जी कहते हैं आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा बिताना चाहिए। स्वयं नारद जी कौन है, ब्रह्मचारी है, और युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ है। कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ के बारे में चर्चा करेगा अच्छा लगेगा, लेकिन ये शास्त्र में वर्णन है कैसा आदर्श गृहस्थ जीवन को बिताना है। तब यहां पे जो बता गया है ना धनम ना जन्म, ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ये प्रार्थना है। तीन प्रकार की प्रार्थना होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ोगे, इसको कहते हैं विज्ञप्ति। जो भगवान को लक्ष्य करके अपना वाणी से उच्चारण करता है इसको कहते हैं विज्ञप्ति। और विज्ञप्ति तीन प्रकार की है। पहला है दैन्यात्मिका, दीनता का साथ आप प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा है लालसामयी। तीसरा है संप्रार्थनात्मिका। और ये जो न धनम न जन्म ये संप्रार्थनात्मिका, और लालसामयी क्या है, आपका कुछ इच्छा रहना चाहिए। क्या इच्छा, कब मेरा ऐसा दिन आएगा प्रभु मैं साक्षात आपका सामने खड़े होके चामर ढुलाते रहूंगा, कब मेरा ऐसा समय आएगा जमुना का किनार पे खड़े होके आपका लीला को स्मरण करते हुए मैं रोते रहूंगा और गाते रहूंगा, ये लाला समाई प्रार्थना है। और संप्रार्थनात्मिका हमेशा अपना को नहीं दैन्य बुद्धि का, तीसरा है दैन्य बुद्धि का, दीनता का साथ है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए मैं कितने बड़ा पापी हूँ। कहते हैं पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राही माम पुनरकक्ष सर्व पाप हर हरी। मैं कितने बड़ा पापी हूँ, मेरा कर्म पाप से है, मैं जो कुछ करता हूँ पाप ही पाप, कृपा करके ये पाप से आप मुक्ति करा दीजिएगा। सर्व पाप हर हरी, संपूर्ण पाप को हरण करने वाले कौन है, हरि है, इसलिए तो उनका नाम है हरि, सब कुछ हरण करते हैं। और ये नौ धनम नौ जन्म का साथ है भक्ति रसम तो सिंधु में, इसका साथ साथ क्या आता है अन्याभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, शुद्ध भक्ति का लक्षण है, इसका साथ ये जोड़ना पड़ता है, नौ धनम नौ जन्म जागा पे अन्याभिलषिता शून्यम। लेकिन आपका मन में आएगा अभिलाष नहीं करना चाहिए, न करना चाहिए, लेकिन किसके लिए, भक्ति के लिए। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियोवास नयने हेरिब सदा जुगल रूप राशि। जुगल मतलब कौन है, पति पत्नी, ये भी जुड़वा है ना, जुगल है नहीं, राधा कृष्ण। प्रत्येक समय में प्रति मुहूर्त में प्रति क्षण में मेरा नयन में दर्शन करते रहूंगा, मेरा नयन से कैसा दूर नहीं जाएंगे, इसलिए कहते हैं प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संभद से माने कृष्णे मोर नाई भक्ति गंध धन जन नाही मागो कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी अति दैन्य पुन मागो दास्य भक्ति दान आपना के करे संसारी जीव अभिमान। जब दासत्व को स्वीकार करेंगे तब अभिमान क्या होता है, नष्ट होते जाता है। जब व्यक्ति गर्भ के अंदर में रहता था तब उसी टाइम में दासत्व को स्वीकार किया, भगवान से प्रार्थना किया प्रभु मेरा को ये दुख से निकालोगे, मैं तब क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका सेवा करूंगा। तब गर्भ का बाहर आने का बाद ये दासत्व को पहले भूलता है, अभिमान आता है। और दासत्व को जब तक स्वीकार नहीं करेगा और तब तक सुख को आस्वादन नहीं कर सकता है। देखिए खिलाने से खाने वाले को जितना आनंद मिलता है लेकिन इसका डबल आनंद किसको मिलता है, खिलाने वाले को। हम तो पटापट अभी चला जाएंगे बैठ जाएंगे, जो सेवा करे देखिए उनको इतने आनंद है, इसलिए तो सेवा इतने आनंद है। और कार्तिक महीना में फिर वृंदावन धाम में आए हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका लेना चाहिए। आके कोई भी मंदिर का अंदर आप देख सकते हैं किसी जगह पे कचड़ा पड़ा हुआ, मैं थोड़ा प्रसाद सर्विस कर सकता हूँ क्या, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है उनको माला दे सकता हूँ क्या, उनको प्रभुपद का पुस्तक दे सकता हूँ, सब सेवा है, ये करना चाहिए। आपके अंदर ये श्रद्धा भाव आना चाहिए। तब ये होने से क्या होता है, तो मन में और ये विचार नहीं आएगा, अभिमान नहीं होगा। अब भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए मेरा को शुद्ध भक्ति के साथ प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना नाही मागी देह सुख विद्या धन जना। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं और मेरा इतना निवेदन है जो कि मैं ना धन चाहता हूँ, ना जन चाहता हूँ, ना विद्या ज्ञान चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपका शरणापन्न होना चाहता हूँ। जिस प्रकार बलि महाराज आत्मनिवेदन का आचार्य है, संपन्न गुरु आके रोक रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि गुरु को वहां पे बलि महाराज को त्याग करना पड़ा। जो कृष्ण के लिए बाधक होते हैं उनको त्याग करना पड़ता है, जो बाधक होता है, और जो कृष्ण के लिए उत्साह के साथ आपको शिक्षा देता है उनको अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। फिर जगन्नाथ भजन में आता है, जग बंधु हे गोसाई किछु मागु नाही तोते, धन मागु नाही जन मागु नाही, मागु छि सरदा बालेरो हाते। शरदा वाली जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर का सामने आप देखोगे वहां पे रेत हमेशा रहता है, वो शरदा वाली है, और उसी जगह से मैं एक ही हाथ माप कर मांगता हूं, मेरा उसी जगह पे स्थान दे दीजिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए कि जन नहीं चाहिए, सिर्फ शरदा वाली। जिस वगैरह हमारा मन में आता है वृंदावन आते तो हमारा इच्छा होता है वृंदावन में छोटा मोटा घर मिल जाए तो वहीं कुटिया बना के थोड़ा भजन करेंगे, होता है कि नहीं होता है? थोड़ा तो आवाज दीजिए ना, नहीं हो रहा है, सभी लोग डर में बैठे, भाई वृंदावन आ जाएंगे तो घर पे क्या करेंगे, सभी लोग सभी के ये डर भी। भगवान से ये प्रार्थना करें, राजा कुलोचक्रवर्ती जो मुकुंद माला सूत्र लगे है लिखे है वो भी यही प्रार्थना की है, आप लोग को पढ़ सकते हैं श्लोक नंबर 5 में, वो भी कुछ नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ये भौतिक सुख की कामना भगवान का पास नहीं करता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, और निर्बोध व्यक्ति के लिए तो ये सब चाहिए, सही ना, तो बुद्धिहीन है। तो भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, ये है उपसंहार पे ये लिखा गया है, ये 4 श्लोक था, काल प्रभु जी ने श्लोक किया थे, और ये आज का श्लोक में आ गया, नॉन धनम नॉन जन्म। काल का श्लोक में आया था, अकाम सर्व काम मुख्य काम वा उदारति त्रिपेण भक्ति जोगेन जजते पुरुषम परम। कुछ भी कामना हो भगवान का शरण पाए, भगवान वो उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन आपका अंदर में जो वासना इच्छा है उसको भी दूर करेंगे, आपको जितने जरूरत है वो देंगे ही देंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, देंगे ही। ध्रुव महाराज इच्छा कर दिए, प्रपिता मह जो स्थान नहीं मिला था, जो आसन नहीं मिला था, मैं उसी आसन को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान प्रकट होने के नाते बोल गए, बोला मेरा कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने आ गए, कुछ नहीं चाहिए। भक्तों को जितना आवश्यक है भगवान प्राप्त कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हमको मांगने का जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत नहीं है। बाप को मालूम है बेटा को क्या जरूरत है, सही है कि नहीं, मां को मालूम होती है संतान को क्या चाहिए, उसको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको कौन सा ड्रेस पहना हो, सही होता है कि नहीं होता है ना। छोटे बच्चा मां के पास बोलता है मेरा ठंडी लग रहा है मेरा को उड़ा दो, ऐसा तो बोलता नहीं ना। अब परमपिता के पास हमें क्या मांगना है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही मानना चाहिए कृपा करके भक्ति दीजिए। संसार का लोग आते हैं तो भगवान का पास हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते मालूम है, सारा संसार छूट जाए भक्ति ना छूटे, सारा संसार छूट जाए नहीं, भक्त प्रार्थना करता है संसार छूट जाए भक्ति ना छूटे। लेकिन बाहर का लोग क्या मांगते हैं, भक्ति छूट जाए संसार न छूटे। भाई साहब संसार छूट गया ना बड़ा परेशानी हो जाएगा, भक्त को मालूम है संसार छूट जाए भक्ति करना, इसलिए तो आया एकला जाना भी एकला, बीच में सब झमेला, और झमेला हम लोग क्रिएट किए और उसको भोगना पड़ेगा, भोग रहा है लेकिन फिर भी कभी भी किसको पूछा जाए, कभी भी फोन आता है किसी को भी पूछा जाता है प्रभु जी कैसे हो? ना ठीक हो, ये बोलता है ना, ठीक नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, बोलना पड़ता है। और ठीक होने के लिए एक उपाय है, भगवान का शरण पाके, भगवान का भजन कीजिएगा और भगवान ठीक कराएंगे, सिर्फ शरणापन्न हो जाए बस। भगवान देख, गीता में बताया है, जोगक्षेम वाहमेव, इसका बारे में मैं चर्चा नहीं किया, आप लोगों को सुने होंगे गीता पंडा के बारे में, जगन्नाथ भक्त चरित है, सब कुछ भगवान का शब्द, जो जो शब्द लिखे है भगवान भगवद गीता को लिखे, कोई भी शब्द मतलब झूठा नहीं जाएगा, मिथ्या नहीं हो सकता है और सत्य। और करके भी दिखाया, ये जो योगक्षेम का बारे में आप लोग को देखोगे गीता पंडा के लेकर के दिखाया, गीता पंडा का पत्नी को विश्वास नहीं थे, गीता पंडा का विश्वास था, इसलिए कहते हैं विश्वास पहले होना चाहिए, फेत होना चाहिए पहले कृष्ण का प्रति, तब कृष्ण सब कुछ फुलफिल कराएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत सारा चीज लेकर आया था, लेकिन समय तो इतना अतिक्रांत हो जाता है तो मेरे बोलने में रुक जाए। श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।